ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ब्रुनेई की सफल यात्रा के समापन के बाद श्री मोदी कल लायन सिटी सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने उनके सम्मान में कल शाम निजी रात्रि भोज दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उल्लेख किया कि श्री वोंग के साथ कई मुद्दों पर उनकी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत सिंगापुर के साथ अपनी मैत्री संबंधों को महत्व देता है। प्रधानमंत्री मोदी आज सिंगापुर के राष्ट्रपति और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक करेंगे। वे सिंगापुर की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र उद्योग वर्ष 2030 तक बढ़कर 350 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इससे देश में 3 करोड़ 50 लाख नौकरियां सृजित होंगी। भारत टेक्स 2025 के आयोजन से पहले श्री सिंह ने आशा व्यक्त की है कि भारत को विश्व में अपने ब्रांड और टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल कपड़ा उत्पादों से वैश्विक पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग के लिए केंद्र सरकार के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना परिधान उद्योग में उत्पादन और ब्रांडिंग बढ़ाने में सहायक होगी। श्री सिंह ने बताया कि ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 अगले वर्ष 14 से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कल शाम जारी की गई सूची के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा सीट से, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से और पूर्व मंत्री अनिल विज अम्बाला कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं असीम गोयल अम्बाला सिटी से, कंवरपाल गुर्जर जगाधरी से और घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भाजपा ने राजकुमार गौतम को सफीदो विधानसभा सीट से, देवेंद्र सिंह बाबली को टोहाना से और कैप्टन अभिमन्यु को नारनौर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। श्रीमती श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दिया गया है। वे हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। पूर्व भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल रतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। सूची के अनुसार भाजपा ने कुल 8 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। एक केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल आज आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में आपदा प्रबंधन अवर सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में ये दल बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेगा और पीड़ितों से बात करेगा। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 26 दल तैनात किए गए हैं। ये दल केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके राहत और बचाव अभियान सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज शाम 4:10 से एफएम गोल्ड इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर उपलब्ध होगा। आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बनकर हरविंदर सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कल रात पुरुषों की निजी रिकर्व ओपन स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद पुरुषों के क्लब थ्रो F151 के फाइनल में धर्मवीर ने 34.92 मीटर की दूरी तक थ्रो करके एशियाई रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही स्वर्ण पदक जीता। परम सूरमा ने इसी स्पर्धा में 34.59 मीटर की दूरी तक अपना श्रेष्ठ थ्रो करके रजत पदक हासिल किया। इससे पहले दिन में विश्व चैंपियन सचिन सर्जराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉर्ट पुट F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता। दिन में जीते 4 पदकों के साथ भारत की पदकों की कुल संख्या 5 स्वर्ण, 9 रजत, 10 कांस्य सहित 24 हो गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।